नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने समयबद्ध आपदा राहत व पुनर्वास कार्यों के लिए मनरेगा नियमों में दी ढील। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, जीएसटी दरों में कमी से आम जनता को मिलेगी बड़ी राहत। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आपदा में नदियों में बड़ी मात्रा में कटी हुई लकड़ी आने पर जताई चिंता, जांच की मांग। और प्रदेश में भारी वर्षा के चलते सामान्य जनजीवन अभी भी बुरी तरह प्रभावित, कुल्लू भूस्खलन में एक की मौत, 6 अभी भी लापता। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में मॉनसून से हो रही भारी क्षति के दृष्टिगत सरकार ने समयबद्ध राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए मनरेगा के नियमों में ढील देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की वास्तविक मांग के अनुरूप इन क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मुरम्मत के लिए अतिरिक्त कार्य किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पुनर्निर्माण कार्यों में गति लाने के लिए उपायुक्तों को ग्राम सभा की पूर्व स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना मनरेगा के तहत नए कार्यों को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच चंबा जिला में मणिमहेश यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान की निगरानी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं कर रहे हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि आज अभियान के तहत 35 बीमार और बुजुर्ग श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से चंबा पहुंचाया गया। आज 500 और श्रद्धालुओं को भी सड़क मार्ग से चंबा पहुंचाने का अभियान शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी पिछले कई दिनों से भरमौर में ग्राउंड जीरो पर रहकर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि जीएसटी दरों में की गई कमी से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि केंद्र सरकार लगातार उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से न केवल लोगों की जेब पर बोझ कम होगा बल्कि बाजार में भी सकारात्मक माहौल बनेगा।
पिछले कल जो फैसला लिया गया जीएसटी काउंसिल में, और उस फैसले में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं जो बहुत बड़े सेक्टर भारत के जो अंदर हैं उनको उसका लाभ होगा। विशेष तौर से एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर मैं बात करूं, जिस एग्रीकल्चर सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और हिमाचल के साथ साथ मैं पूरे देश की अगर मैं बात करूं, 80% जो है वो किसान बागबान है। ऐसे में बहुत बड़ी राहत एग्रीकल्चर सेक्टर में जो दी गई है जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में, तो वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ में हेल्थ सेक्टर में भी बहुत बड़ा लाभ जो है वो भारत के लोगों को मिला है।
इस बीच जीएसटी में राहत का आम जनता ने भी स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि इस फैसले से रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, जिसका सीधा फायदा मध्यम वर्ग के परिवारों को होगा।
जीएसटी के लिए जो मोदी सरकार ने किया, जो मध्यम वर्ग परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत का काम किया गया है। इससे हर चीज में सहूलत मिलेगी। आप कुछ भी देख लीजिए, चाहे खाने पीने के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, या रोजमर्रा की जो भी चीजें हैं उसमें, तो मैं तो समझता हूँ इसे जो हमारे मध्यम वर्ग के परिवार है उसके लिए बहुत बड़ी राहत का काम किया गया। एक किस्म से उन्हें मोदी जी ने तोहफा ही दिया है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में आई प्राकृतिक आपदा के समय अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है और झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रही है। अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश की प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग को गुमराह करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली पूर्व यूपीए सरकार ने वर्ष 2013 में ही प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रावधान समाप्त कर दिया था। अनुराग ठाकुर ने वर्ष 2023 में प्रदेश सरकार द्वारा आपदा पीड़ितों के लिए घोषित 4,500 करोड़ रुपए के पैकेज को झूठ करार दिया और कहा कि वास्तव में सरकार ने अभी तक सिर्फ 256 करोड़ रुपए ही इस पैकेज के नाम पर जारी किए हैं। इस संबंध में सरकार ने स्वयं विधानसभा में लिखित जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश के 34 स्वास्थ्य संस्थानों में शीघ्र ही अत्याधुनिक सिटी स्कैन मशीन स्थापित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने आज शिमला में उच्च स्तरीय खरीद समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इन मशीनों की खरीद प्रक्रिया 3 महीने में पूरी की जाएगी और दिसंबर तक जनता को इन सेवाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इन मशीनों के स्थापित होने से लोगों को निकटवर्ती स्थानों पर ही आधुनिक और विश्वसनीय सिटी स्कैन सेवाएं उपलब्ध होंगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि वन विभाग का प्रदेश के जंगलों पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपदा के दौरान प्रदेश के जंगलों से आई लकड़ी पर संज्ञान लेने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि वन अधिकारी जंगलों में जाते ही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पेड़ों का नदियों में बहकर आना समझ आता है, लेकिन कटी हुई लकड़ी के स्लीपर आना बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने माना कि प्रदेश के जंगलों में पेड़ कट रहे हैं और वन विभाग का इस पर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने सरकार से इस सारे मामले की जाँच की मांग की।
ये आपदा आई और इसमें जिस तरह से त्रासदी हुई और जिस बड़े पैमाने पे लकड़ियां भी जो नदियों में बह करके आई है और कटी हुई लकड़ियां बह करके आई है, इस पे तो प्रश्न चिन्ह उठता ही है कि इतने बड़े पैमाने पे इतने बड़े बड़ी लकड़ियां, अब मान लो पेड़ अगर आ जाए तो समझ में आ सकता है पेड़ तो वॉश आउट होकर के आ गया, मगर कटे हुए स्लीपर्स और कटे हुए लॉग्स अगर नदियों में बह रहे हैं तो निश्चित रूप से जो पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल है और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है जहाँ पे एसेस नहीं है, वहां पे इस तरह का कटाव हो रहा होगा। ये भी एक जांच का विषय है और सरकार को बहुत गहराई से इस विषय पे भी सोचना चाहिए, विशेष करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का सरकार बड़े पैमाने पर विस्तार कर रही है। अग्निहोत्री ने आज शिमला में कहा कि चार्जिंग स्टेशनों के लिए प्रदेश में 46 स्थान चयनित किए गए हैं। इनमें से 34 स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए राज्य सरकार ने 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा योजना के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से लगभग 111 करोड़ रुपए की ऋण सहायता भी प्राप्त हुई है। अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल ई मोबिलिटी क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ रोजगार और अधोसंरचना विकास के नए द्वार भी खोल रही है। प्रदेश में मॉनसून की वर्षा में आज हल्की कमी आई है, इससे लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मॉनसून की भारी वर्षा के चलते राज्य में सामान्य जनजीवन अभी भी बुरी तरह प्रभावित है। इस बीच कुल्लू के इन्नर अखाड़ा बाजार में आज सुबह हुए भूस्खलन में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य घायल हैं। इस घटना में 6 लोग अभी भी लापता हैं। कुल्लू की उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने बताया कि मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए सर्च अभियान लगातार जारी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे भूस्खलन वाले क्षेत्रों से दूर रहें। उधर चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने आज भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त चंबा भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया और मार्ग बहाली के कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने ये भी कहा कि खराब मौसम के कारण वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर आज चंबा नहीं पहुंच पाए। मौसम खुलते ही ये हेलीकॉप्टर भरमौर में फंसे मणिमहेश यात्रियों को निकालने के काम में जुट जाएंगे। भारी वर्षा के चलते प्रदेश में अभी भी 4 राष्ट्रीय राजमार्ग और 1208 अन्य सड़कें, 1885 बिजली ट्रांसफार्मर और 824 पेयजल योजनाएं बंद हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए प्रदेश में अंधड़ और आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 6 सितंबर से वर्षा संबंधित गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने समयबद्ध आपदा राहत व पुनर्वास कार्यों के लिए मनरेगा नियमों में दी ढील। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, जीएसटी दरों में कमी से आम जनता को मिलेगी बड़ी राहत। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आपदा में नदियों में बड़ी मात्रा में कटी हुई लकड़ी आने पर जताई चिंता, जांच की मांग। और प्रदेश में भारी वर्षा के चलते सामान्य जनजीवन अभी भी बुरी तरह प्रभावित, कुल्लू भूस्खलन में 1 की मौत, 6 अभी भी लापता। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।